नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति जनगणना पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। इसमें एक बच्चे वाले परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने से जुड़ी नीतियां बनाने के लिए भी केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। 2 फरवरी को शीर्ष अदालत ने 2027 की जनगणना में नागरिकों के जातिगत आंकड़े के रिकॉर्ड, वर्गीकरण और सत्यापन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति पर किए गए सवाल से जुड़ी एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई से इनकार कर दिया था। जनगणना 2027 के पहले चरण में अब तक 5,72,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना सुविधा का लाभ उठाया है। भारत के महापंजीयक ने कहा कि ये जनगणना के लिए डिजिटल पहल में बढ़ती जनभागीदारी को दर्शाता है। जनगणना का प्रथम चरण 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। स्वगणना सुविधा 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण और आवास गणना 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में श्री हरिवंश का कार्यकाल कल समाप्त हो गया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद श्री हरिवंश को मनोनीत किया गया है। गृह मंत्रालय ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कुमार को शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया। इस अवसर पर श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सिंधी सबसे प्राचीन और मधुर भाषाओं में से एक है। इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये आयोजन केवल भाषाई विरासत का उत्सव ही नहीं बल्कि देश की एकता और सांस्कृतिक विविधता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। इस चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। 13 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी प्रमुख उम्मीदवारों में से एक हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया संकट के बीच मॉरिशस की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उसके साथ तेल और गैस की आपूर्ति से जुड़े समझौते को अंतिम रूप दे रहा है। डॉ जयशंकर ने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट ने विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि भारत का सार्वजनिक उद्यम देश की पहली तैरने वाली सौर बिजली परियोजना को विकसित कर रहा है। भारत और अमेरिका पैक्स सिलिका के अंतर्गत सहयोग को बढ़ाने और एआई तथा महत्वपूर्ण खनिजों सहित व्यापक आर्थिक और तकनीकी समझौतों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश उप सचिव जैकब एस हेल्बर्ग के बीच हुई चर्चा में इन विषयों पर विचार विमर्श हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम की सफलता पर आशंका व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर ईंधन ले जा रहे जहाजों के संबंध में सहमत शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले टैंकरों पर शुल्क लगाने की खबरों के खिलाफ ईरान को चेतावनी दी। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक दोपहर के सत्र में 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 757 अंक बढ़कर 77,389 जबकि निफ्टी 238 अंक के साथ 24,014 पर था। चंपारण सत्याग्रह की आज 107वीं वर्षगांठ है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के स्वाधीनता संग्राम का ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1917 में इसी दिन बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।